अब हम चलेंगे रिस्क की कुंजियाँ, रिस्क मैनेजमेंट पे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ज़ाहरी, मानवी, बातनी हर रिस्क अता फरमाए, हमारे ऊपर उतारे। अल्लाह हमें ज़हानत का, अक़ल का, फ़हम का, इताअत का रिस्क भी अता फरमाए। हमने रिस्क को रोटी कपड़े में डाल दिया, बस रोटी कपड़ा और मकान। चलिए, रिस्क का कॉन्सेप्ट इस्लाम में इतना वसी है कि जब आप अल्लाह ताला के रज़ाक होने को महसूस करते हैं ना, तो आप उसको समझते हैं। तो बस, औलाद भी रिस्क है, माल भी रिस्क है, स्किल्स भी रिस्क है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो जाए। शुरू करूँगी, आप लोग भी मुझे उम्मीद है हर डिस्ट्रैक्शन को अपने से दूर कर चुके होंगे। आपके और आपके इल्म हासिल करने के बीच में कोई चीज़ नहीं होगी। जो काम बाद में हो सकें वो अब नहीं करने। ये इल्म का वक्त है, इसको बिला शिरकते गैरे लीजिए। जैसे अल्लाह ताला की ज़ात शिरक से पाक है, इसी तरह उसकी किताब और उसकी बात भी शिरक से पाक है। तो लिहाजा इस वक्त कुछ और ना कीजिए। सारा दिन रखा है, बहुत लंबा वक्त है। जो चाहेंगे आप इंशाअल्लाह ताला उससे फ़ायदा उठाएंगे। जी, किसी का एक सवाल मेरे सामने आ गया तो मैं साथ ही जवाब दूं। अगला शुरू करने से पहले कि कौन सा दुरूद पढ़ें, जो कि मैंने अभी जुमे के लिए कहा। देखिए, आप सिर्फ इतना भी कह सकते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ठीक है? ये बेहतरीन दुरूद है, छोटा है लेकिन अच्छा। और मुस्तनद दुरूद जो है, तो दुरूद इब्राहिमी, जो हम सब नमाज के आखिरी हिस्से में पढ़ते हैं। अल्लाह ताला आपका कबूल भी करे। और एक दफ़ा दुरूद पढ़ने पे 10 रहमतें उतरती हैं। अल्लाह ताला आप सब पढ़ने वालों को अता फरमाए। चलिए, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। रब्बिश्राहली सदरी व यस्सिरली अमरी واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير। रिस्क की कुंजियाँ, रिस्क मैनेजमेंट, कैसे अपने रिस्क को अल्लाह ताला से भरपूर तरीके से हासिल करें। आज इसका डे 5 है। कल के दिन में जो हमने 3 चाबियाँ देखी थी, उसमें पहली क्या थी कि आखरत को अपना मतमाए नज़र बनाना, यानी दुनिया की ही फिक्र नहीं करना, सिर्फ आखरत की भी फिक्र रखनी है। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ हमने देखी थी, अल्लाह ताला की किताब पर अमल करना, क्योंकि माँ को भी अपना बच्चा वही अच्छा लगता है जो उसकी बात को माने। अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला जो बात कहते हैं वो सच है, उस पर अमल तो करना पड़ेगा। तो अल्लाह को भी वो बंदा अच्छा लगता है जो अल्लाह की बात माने। और तीसरी चीज़ हमने देखी थी, एहसान, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। और वो बंदों के साथ एहसान, मामलात में झलकता है। हक से ज़्यादा दीजिए, जो दुख दे उसको माफ़ कर दीजिए, जो बददुआएं दे उसको दुआएं दीजिए। और अल्लाह के मामले में तो एहसान क्या है कि कान न का तरा हो, इबादत को खुशू और खुदू से करना। आज हम 13वीं चाबी यानी 13th पॉइंट से बात शुरू करेंगे। रिस्क लाने वाली चीज़ों में से एक चीज़ है ईमान और अमल सालेह। इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, ये वो चीज़ है कि जिसके ऊपर अल्लाह ताला की रहमत से जन्नत का भी मेयार है। कभी कुरान में आप ये नहीं पढ़ेंगे इन्नल्लज़ीना आमनु लहुमुल जन्ना। और शायद सबसे ज़्यादा तर्जमे के साथ समझा जाने वाला जुमला ही कुरान में हमारे लिए ये इन्नल्लज़ीना आमनु वामिलुस्सालिहात। सूरत असर में देख लीजिए, वलअस्रिनल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु वामिलुस्सालिहात वतवासु बिलहक़ की वतवासु बिस्सब्र। तो अमल सवाले से क्या मुराद है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लिए लिखें। और इसमें इंशाल्लाह हम दलाइल देखते जाएंगे साथ साथ। हमारा रब अच्छे काम करने वालों को पसंद फरमाता है, और ईमान और अमल सवाले की हैसियत क्या है, और देखेंगे कि अमल सवाले क्या होता है। क्योंकि हर बंदा अपने आप को कहेगा कि मैं तो बड़े अच्छे काम कर रहा हूँ। दुनिया की नज़र से देखें तो अमल सवाले की तो बड़ी मुख्तलिफ बातें हैं, लेकिन शरीयत के एतबार से क्या है, अमल सालेह से मुराद वो अमल है जिसके करने वाले का मकसूद रज़ाए इलाही हो, और वो अमल किताब व सुन्नत की इत्तेबा में हो। आसान जुमलों में इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अमल सालेह से मुराद वो अमल है कि जिसको करने वाले ने अल्लाह की रज़ा के लिए किया हो, यानी लिल्लाहियत लिख लीजिए इसको, सिर्फ अल्लाह के लिए, कोई शोहरत नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई दुनिया का फ़ायदा मकसूद ना हो, और सो ऑन, सिर्फ अल्लाह राजी हो जाए। इस वक्त आप सीख रहे हैं ताकि अल्लाह राजी हो जाए, मैं सिखाने की कोशिश में हूं ताकि अल्लाह राजी हो जाए। एडमिन्स अपनी अपनी ड्यूटीज में हैं, ब्रॉडकास्टिंग टीम अपनी अपनी जगहों पे है, क्यों? अल्लाह राजी हो जाए। हर बंदा एक दफ़ा खुद से पूछ ले, क्या बाकी मैं अल्लाह की रजा के लिए बैठा हूँ? क्या ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये इसके लिए कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए कर रहा हूँ? तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भूल जाइए, फिर लोग आपको कुछ देना दें और आपको दो लोग देंगे भी क्या? आपका ये काम अल्लाह की रजा अगर आपको दिला दे तो खैरु मिनत दुनिया व मा फीहा, ये हम पढ़ चुके हैं रजा के मौजू पे, तो करना अल्लाह के लिए। इसी तरह मुझ साजिश से भी अगर अल्लाह ये काम ले रहा है तो मैं खुद से पूछ रही हूँ कि मैं ये क्यों बैठी हूँ? तो मैं भी ये चाहती हूँ कि अल्लाह के बंदों को कुछ नफ़ा दे दूँ, अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से कुछ आपसे शेयर करूँ, मिम्मा रजक ना हम युनफिकून, और इसी तरह के मेरा रब राजी हो जाए। तो हम सब की अगर नीयत दुरुस्त हो गई, किबला ठीक है, तो देखिए खैर और बरकत के ऐसे अंबार लगेंगे जिसको आप समेट नहीं सकेंगे। दूसरी शर्त है अमल सवाले की, वो अमल किताबो सुन्नत की इत्तेबा में हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए तरीके पे हो। ये है आमनु वामिलु सालेहात। तो पहली बात, नियत अल्लाह की रजा, तरीका नबी सल्लम का, ये है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। इसके अलावा आप देखिए कि दुनिया में हर बंदा ही अपने काम को अमल साले कहेगा, तो मैं दो लफ्ज़ इंग्लिश के बोलूंगी जिससे आपको एक जम मिल जाएगा कि रियल में अमल साले क्या है। देखिए, राइटियस डीड्स एंड गुड डीड्स, ये दो लफ्ज़ लिखिए अपने पास। हर गुड डीड राइटियस डीड नहीं है, ये बात समझ लें। राइटियस डीड्स ये हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं अल्लाह रसूल के हुक्मों से। गुड डीड्स वो हैं जो हर मुस्लिम गैर मुस्लिम कर रहे, कोई सोशल वर्क कर रहा है, कोई किसी के आगे बैठा है। आप अमल सवाले की बात करते हैं, आप हर मजहब वाले से पूछिए, क्रिश्चियंस कहेंगे कि जीसस जीसस कहना अमल सवाले है। आप किसी पैगन रिलीजन को फॉलो करने वाले से पूछिए, वो कहेगा कि अपने बुजुर्ग और बुत के सामने बैठ के कुछ पढ़ने का नाम अमल सवाले है, तो वो उनकी मिथ है, उनके लिए वो ठीक है। मुसलमान के लिए गुड डीड नहीं, राइटियस डीड। आज गुड डीड के नाम पे लोग कहते हैं फॉर अ गुड कॉज, तरीका नबी के खिलाफ है। नीयत बड़ी अच्छी है कि इससे कोरोना वायरस के बेचारे गरीब लोग जो मुतासिर शुद्धगान हैं उनके लिए पैसे जमा किए जाएं, नीयत अच्छी है। यानी पहली शर्त आ गई रज़ा इलाही, दूसरी नहीं है कि अल्लाह के नबी ने भी कभी कोई कॉन्सर्ट्स कर करा के कुछ इस तरह के काम किए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप बात को समझ चुके हैं। अब इसके दलाइल लेंगे कि क्या दलाइल है हमारे पास। तो पहली दलील सीखेंगे, मन अमिला सालिहं मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा हयातन तय्यिबतं वलनज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जो शख्स नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, शर्त यह है कि वो मोमिन हो, तो हम उसको ज़रूर नहायत पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेंगे और हम इन्हें इनके अमाल का अच्छा बदला ज़रूर अता फरमाएंगे। ये रिवायत हवाले के साथ लीजिए, सूरत नहल 97। मुझे लगता है कि पाकीज़ा ज़िंदगी के नाम पर इससे खूबसूरत आयत नहीं। पाकीज़ा ज़िंदगी क्या है? अल्लाह करे कि मेरी आपकी ज़िंदगी पाकीज़ा हो जाए। तो अच्छे अमल करने वालों की जब ज़िंदगी पाकीज़ा होगी तो क्या रिस्क पाकीज़ा नहीं होगा? तो नेक्स्ट पे चलिए, देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लम ने भी इसके बारे में कोई बात की तो बिल्कुल की। इमाम मुस्लिम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो से नकल करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यस्लिमु मुमिनन हसनतन मुमिनन हसनतन युता बिहा फिद दुनिया व युज़ा बिहा फिल आखिरा। बिला शुबा मोमिन, बिला शुबा अल्लाह ताला किसी मोमिन पर किसी नेकी के बारे में जुल्म नहीं करते। इसे दुनिया में इसके सबब से अता किया जाता है और इसे आखिरत में इसका बदला दिया जाता है। तो बहुत बड़ी दलील मिल गई आपको मुझे कि अच्छे काम करने वालों को अल्लाह दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी। नेक्स्ट चलिए, एक और रिवायत है बहुत ही प्यारी। इमाम अहमद रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़रत अनस से नकल किया और हम तक पहुंची, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यस्लिमुल मुमिना हसनतन युसाबु अलैहा रिज़्क फिद दुनिया व युज़ा बिहा फिल आखिरा। बिला शुबा अल्लाह ताला मोमिन पर किसी भी नेकी के बारे में जुल्म नहीं करते। इसे दुनिया में रिज़्क की सूरत में सवाब दिया जाता है और इसे आखरत में इसका बदला दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला हमें इस पे यकीन आने वाला बना दे। एक और रिवायत है, देखिएगा, इमाम मुस्लिम ने कतादा से ये रिवायत नकल की और अनस रज़ी अल्लाहु अन्हो से हमें मिली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इस चेन को कबूल किया करें और खुशी महसूस किया करें कि आज हम उस जगह बैठे हैं जहां हम कुरान और सुन्नत हदीस को रियल टेक्स्ट के साथ देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें इन्हीं दो पे किफ़ायत करने वाला बना दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान के मोती क्या हैं, और याद रखिए कि हदीस सुनने वाले के लिए अल्लाह के नबी की दुआ भी है कि अल्लाह उसके चेहरे को तरोताज़ा रखे, फ्रेश रखे। तो आजकल तो इसकी बहुत ज़रूरत है। क्या फरमाया आपने, इन्नल काफिरा इज़ा अमिलल हसनता उनेमा बिहा तो मतम मिनत दुनिया व अम्मल मोमिनु फ़इन्नल्लाह यद्दखिरु लहू हसनातिहि फिल आखिरा व युअक्किबुहु रिज़्क़न फिद दुनिया अला ताअतिहि। बिला शुबा जब काफिर नेकी करता है तो इसके सबब दुनिया से कुछ खाना यानी रिस्क उसको दिया जाता है, इमेजिन कीजिए। लेकिन रहा मोमिन तो इसका मामला ये है कि इसकी नेकियों को अल्लाह ताला इसके लिए आखिरत में महफूज कर देते हैं और इसकी इताअत गुजारी की बिना पर इसको दुनिया में रिस्क देते हैं। क्या बात सीखी, खुलासा कर देती हूँ। काफिर को यानी गैर मोमिन को तो दुनिया में ही अपने अच्छे कामों का बदला दिया जाता है। आज हमारे बच्चे भी ये सवाल करते हैं समटाइम कि जब वो गैर मुस्लिम हैं और अल्लाह को नहीं मानते या उसके हुक्मों को नहीं मानते तो फिर उनको इतना रिस्क क्यों दिया जा रहा है, उनके मुल्क इतने अच्छे क्यों हैं, इतनी सफाई क्यों है उधर। ऐसी मासूम सी बातें आप अपने बच्चों से ज़रूर सुनेंगे। तो उसका जवाब आज इस हदीस की सूरत में नोट करके उनको दीजिएगा कि देखिए अल्लाह ताला ने मोमिन की नेकियां, आप देखिए ना, ये तो नहीं हो सकता कि जो इस्लाम पे नहीं है वो नेकियां नहीं करता। आप देखते हैं चैरिटी के नाम पे, सोशल वर्क के नाम पे, सोशल जस्टिस के नाम पे गैर मुस्लिम मुल्कों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो मुसलमान भी कभी कभी भूल जाते हैं। तो अब अल्लाह ताला उनकी उन नेकियों के साथ क्या करेगा क्यामत के दिन, ये सवाल है। तो वो उसका जवाब है कि उनकी नेकियों को अल्लाह ताला दुनिया में ही अपनी रहमत से नवाजता है। तो ये जो हमें खैर मिलती है ना गैर मुस्लिम मुल्कों में, ये उनकी नेकियों का दुनियावी बदला है। चलिए मोमिन पे वो है आपके सामने। मोमिन को दुनिया में मिले ना मिले ये ऑप्शनल है, लेकिन आखिरत में ज़रूर मिलेगा, अल्लाह ताला उसको महफूज करते हैं। बताइए कहाँ देना ज़्यादा बेहतर है, जहां हमेशा रहना है या जहां से उठ के चले जाना है। आपने सोफा ऑर्डर करना हो तो किस एड्रेस पे ऑर्डर करेंगे, जहां आप 10 दिन के लिए रुके हुए हैं या जहां आप रहते हैं और आप उसको अपना परमानेंट होम कहते हैं। तो बस समझ में बात आ गई आपके भी अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने आपके मेरे लिए अगर दुनिया में कोई तकलीफ कोई परेशानी भी लिखी है, दिल की खुशी से उसको मानिए। ये दुआ कीजिए कि जहां जाना है वहां अल्लाह ताला फिर कोई गम और कोई तकलीफ का मुंह भी ना देखना पड़े, वहां ना कोई परेशानी आए। क्योंकि हकीकत यह है कि अगर वहां परेशानी आई तो क्या होगा, दुनिया में आजकल कोई परेशानी आती कितने लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं, प्यार डाला हुआ अल्लाह ने दिलों में, मोहब्बत है, कहीं लिहाज है। हम कहते नहीं हम इस वक्त में किसी को तनहा नहीं छोड़ सकते, हम उसके साथ ये नहीं कर सकते वो नहीं। तो आप सोचिए कि आखिरत के बाद अगर खुदा न खास्ता आपको मुझे कोई मुश्किल आ गई तो क्या बनेगा, और अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की सारी तकलीफ़ों से बचाए। अब इन सब बातों पे कुछ मुफस्सरीन के कुछ खूबसूरत पॉइंट्स हैं। हाफिज़ इब्ने कसीर की ये बात है जो आपसे शेयर करने लगी हूँ। अल्लाह ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के साथ अमल करने वाले के लिए ख्वाब मर्द हो या औरत, अल्लाह की जानब से वादा है कि वो इसे दुनिया में हयातन तय्यिबा और आखिरत में इसके अमल से बेहतर बदला अता करेंगे। आपने कभी सच्चे मोमिन की ज़िंदगी में इत्मीनान और सुकून देखा, और अगर आप खुद भी अल्लाह की रहमत से ऐसे ही हैं तो आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान होगा। चलिए क्रॉस वाइज समझते हैं। सवाल लिखिए, क्या आपकी ज़िंदगी में सुकून है, क्या आप अपनी मौजूदा ज़िंदगी से मुतमईन हैं, आप परेशान तो नहीं रहते अक्सर। राह चलता किसी से ये सवाल कीजिए। आप तो इस वक्त इल्म की महफिल में तो हो सकते हैं हम कॉन्शियसली जवाब दे देना, लेकिन आम तौर पे आप देखिए कि लोगों का परसेप्शन क्या है। बड़ी मसले बड़ी गम है, ऐसी किसी से ना बड़ी भोली सी आवाज़ में पूछे आंटी जी को मसला है, भाई क्या बताऊँ। आंटी जी ने घुटनों की दर्दों से बातें शुरू करनी है और बच्चों के बिगाड़ से बात कहीं चली जानी है आगे। जुमला लिखिएगा, ये फ़ायदा देगा आपको। मोमिन की ज़िंदगी में कोई गम नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, बीमारी नहीं होती। अब क्या मतलब है वो मोमिन बड़ा पहुंचावर बड़ा नेक है? नहीं, लिखिए बीमारियां भी होंगी परेशानियां भी होंगी रिस्क की तंगियां भी होंगी, लेकिन दिल में एक गहरा सुकून होगा। فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ مانگیے۔ یہ ڈالر سے نہیں ملتی، پاؤنڈ سے نہیں ملتی، کرون سے نہیں ملتی، روپیز سے تو بالکل ہی نہیں ملتی، کسی چیز سے نہیں ملتی۔ زندگی میں اس کو لینے کے لیے آمنو وعمل الصالحات کرنے پڑیں گے۔ باہر طوفان ہو، آندیاں ہو، مومن اپنے مزے کی انجوائمنٹ میں پڑا۔ دیکھیے، جنگوں میں بھی جانا پڑا اسلام کے نام پہ، عمل صالح کے نام پہ صحابہ کو جنگیں لڑنی پڑی، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا دل میں سکون ہوتا تھا گہرا، یعنی تلواروں کی چھاؤں میں ہے اور ادھر ہڑبونگ مچی ہوئی ہے، کافر کو جان کے لالے پڑے، ہائے مرنا جو ہائے نہ ہو۔ جیسے آج بھی کچھ لوگ صرف خبریں سن سن کے مر رہے ہیں، ہاں اتنے مر گئے، اتنا پھیل گیا، وہاں مرض آ گیا، یہ ہو گیا، لاک ڈاؤن ہو گیا، کرفیو آ گیا۔ مومن کہتا ہے چھوڑو، آمنو وعملوا الصالحات۔ تو اپنے دل سے اپنے ایمان کو آپ اور میں چیک کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں سکون دے گا۔ ایک اور مفسر ہے علامہ رازی، بہت ہی پیاری تفسیر ہے ان کی بھی، عرب تفسیر ہے، بعد میں اس کو پھر جس زبان میں بھی کوئی ٹرانسلیٹ کرے۔ انہوں نے ایک سوال اٹھایا اس آیت پہ اور ساتھ اس کا جواب بھی دیا۔ سوال کیا کہتے ہیں کہ من عمل صالحا، جس کسی نے بھی اچھا عمل کیا۔ اس میں لفظ من، یہ کیا ہے؟ عموم، کامن کے لیے، یعنی اس میں مذکر بھی ہے مؤنث، یعنی میل اینڈ فیمیل، مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، تو پھر بعد میں مؤنث کا ذکر کیوں کیا؟ اب آپ کو نہیں یہ بات کلیئر ہو سکتی ہے؟ کوئی بات نہیں، اٹس فن، کیونکہ عربی زبان کی یہی تو خوبصورتی ہے، جس کو پانے کے لیے تفصیل سے پڑھنا پڑتا ہے، زندگی کا ایک دو سال خاص کرنا پڑتا ہے۔ نیت کیجئے، دعا کیجئے، ارادہ کریں، باقی کام اللہ پہ ڈال دیجئے۔ تو شروع میں تو مذکر اور مؤنث دونوں ہیں، لیکن بعد میں آیت کا انداز کیا ہے؟ مؤنث کا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے من ذکرن او انثا کیوں فرمایا؟ تو جواب خود ہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ اس آیت میں بھلائیوں کے عطا کرنے کا وعدہ ہے، اور اسے ثابت کرنے اور ایسے وعدے کی قطعیت، یعنی قطعی بات ہے یہ، ڈیفینیٹ، ثابت کرنے اور کسی کے ساتھ اس کی تخصیص، یعنی اس کو کسی کے لیے خاص نہ کیا جائے، اس وہم کا ازالہ کرنے کی غرض سے کوشش کی گئی۔ یعنی میں اس کو آسان لفظوں میں بتا دیتی ہوں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، بس نو جینڈر ڈسکریمینیشن ان گڈ ڈیڈز، ایکویلٹی ہے، یہاں ریئل ایکویلٹی دکھتی ہے آپ کو میل اینڈ فیمیل کی۔ مرد نیکی کرے گا اللہ کے لیے اور طریقہ نبی کا، آج اس کو پلے سے باندھے اور اس جیم کو عام کر دیں کہ عام انواع مل صالحات سے مراد کرنا اللہ کی رضا کے لیے، طریقہ اختیار کرنا نبی کا، دونوں میں ایک میں کمی ہوگی نا، پھل نہیں آئے گا، برکت نہیں آئے گی۔ پھلتا پھلتا وہی بندہ ہے جس کی یہ دو نیتیں، طریقے بھی ٹھیک رکھیے اور نیتیں بھی ٹھیک رکھیے، اس کے بعد آپ عورت ہیں یا آپ مرد ہیں کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ دے گا۔ تو آگے چلیے دیکھتے ہیں، نیکسٹ تھنگ دیکھیے گا کہ حیاتن طیبہ عطا کرنے کا تاکیدی وعدہ، اتنی تاکید کیوں؟ دیکھیے آپ آیت کو دیکھیں، اور اللہ کرے کہ اگلے سال جب آپ ہمارے سے زاد الخیر کر رہے ہو تو اللہ کی توفیق سے یہ باریکیاں آپ بھی سمجھ رہے ہوں، جیسے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ باتیں اس وقت یقیناً سمجھ آ رہی ہوں گی۔ اور وہ سوال کیا ہے جو یہاں پیش کیا جا رہا ہے کہ حیاتن طیبہ عطا کرنے کا تاکیدی وعدہ، بہت ساری تاکیدیں ہیں، مثلا کون سی تاکید ہے اس وقت اس آیت میں؟ تو پہلی چیز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کی بنا پر صیغہ تاکید فرمایا، لام، فَلَنُحْيِ، لام جو ہے نا، لام، یہ لام توکید ہوتا ہے، اور اس کے بعد ینا، نون نون سکیلا ہے، بس اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ جس بات پہ بہت زور دیا جائے نا، جیسے خواتین مردوں کو کہتی یہ تو ضروری لانا ہے، دیکھیے دودھ نہ بولیے گا، اور ہاں سنے سنے وہ نیپکنز بھی لانے ہیں، تو یہ جو عورتوں کے ماشاءاللہ انداز میں ایک شدت اور ایک تیزی ہوتی ہے نا، یہ وہی ساری ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ تاکید کے بغیر بھی اپنے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی تو نہیں فرماتے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا بھی کہہ دیتے کہ جو بھی ایمان لانے کا عمل صالح کرے گا ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، فا بھی اتر جاتی، لام بھی اتر جاتی، آخر سے نون بھی اتر جاتی، نو پرابلم۔ لیکن اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یقین دلانا چاہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بلا شبہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ اپنا وعدہ پورا سب سے زیادہ کرتے۔ سب سے زیادہ کون وعدہ پورا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا کون ہوگا؟ تو جب اللہ تعالیٰ تاکید فرمائے، قطعیت ہو، ہم حتمی بات ہو، یقینی ہو، تو کیا پھر آپ کو اس بات میں کوئی شک ہوگا؟ تو کیا پتہ چلا، یہ اللہ کی شان ہے۔ ایک سوال ہے، اس کا جواب ہے कि ईमान और अमल सालेह की बिना पर दुनिया में अता फरमाने वाले रब्बे करीम हैं। और जाहिर है कि ईमान और अमल सालेह तो बंदे की इस्तेतात के ही मुताबिक होंगे ना, यानी आप अपनी इस्तेतात, अपनी वसअत, अपने माहौल के मुताबिक अमल करेंगी, मैं अपने हिसाब से करूंगी, इसी तरह बाकी साथी भी हैं। और इनकी बिना पर दुनिया में मिलने वाला बदला इसके अता करने वाले रब्बे जुल जलाल की शान किब्रियाई के मुताबिक होगा। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ये नुकता समझाऊं, चाहे वक्त कम हो या ज्यादा, बट ये नुकता समझिए। अब मैं इसको आपको जो कहते हैं ना घरेलू जुबान, ठेठ जुबान में समझाती हूँ, क्योंकि किताबी बातें किताबी होती हैं, वो जहन पे तो लिखी जाती हैं, दलाइल तो बनते हैं लेकिन दिल पे नहीं लिखी जाती। तो दिल पे लिखने के लिए इस बात को समझाने की कोशिश करती हूँ। दुनिया में हर बंदा और बंदी अपनी तौफीक अपने हालात के मुताबिक नेकियां करता है। सूरत बनी इसराइल में हम पढ़ेंगे कुल्लू या मलु अला शाकिला, अल्लाह ने हर एक एक शाकिला बनाई, एक उसका स्केल्टन बनाया, एक उसका कह लीजिए ढांचा बनाया, उसके मुताबिक काम करता है। कोई सुस्त है तो कोई चुस्त है। अब सुस्त बंदा नेकी करेगा तो उसकी नेकी सुस्त नेकी होगी, तो चुस्त बंदा चुस्त नेकी करेगा। एक इंटेलेक्चुअल एक नजर डाली, ओके ओके समझ गया, दूसरा कहता ठहरे जरा फिर बताइए, कुछ और बताइए, कुछ और कीजिए, फर्क है ना। बंदा तो अपनी इस्तेतात से काम करेगा बट अल्लाह दोनों को अपनी शान से अता करेगा। और एक एनालॉजी ले लीजिए, दिल में अल्लाह ने डाली है तो आपका हक बनता है, या आपका रिस्क है जो अल्लाह दिल में डालता है। बच्चा इम्तिहान में अपनी इस्तेतात के मुताबिक लिखता है, उसकी जितना हाफजा है जो वो कर सका, जैसे दो बच्चे बिल्कुल एक जितनी मेहनत करने वाले, उस्ताद दोनों को करीब से जानता है, बल्कि दूसरा पहले से ज्यादा वक्त लगाता है पढ़ने में, उसको याद ही नहीं होता, एक को हो जाता है, तो क्या उस्ताद नहीं देख रहा होता कि इसने कोशिश की है तो फिर मैं इसको अता भी ज्यादा करूं। तो स्टूडेंट तो पेपर में अपनी अपनी इस्तेतात से लिखते हैं, और दुनिया के उस्ताद और एग्जामिनर्स पाबंद हैं इस पे कि जो कापी में लिखा हुआ है ना उसके मुताबिक नंबर्स दीजिए। समझिएगा, मैथ का पेपर है, क्योंकि 2+2 है तो बात समझ आ जाती है। मैथ का पेपर चेक करने वाला उस्ताद क्या करेगा, दो पेपर रख के सामने बैठेगा, पांच में से जिसके पांच ठीक है उसको 100 नंबर, दूसरे के चार ठीक है तो उसके नंबर उसके हिसाब से 80 होंगे, और कम हो गए तो कम होते जाएंगे ना। अब अगर वो गलत वाले को भी 100/100 ही दे दे तो ये उसकी तरफ से फेवरेटिज्म होगा, या तो उसने कोई रिश्वत ली हुई है या ये इसका अपना है, उस पर सोच सकती है, ये उसकी मजबूरी है। लेकिन अल्लाह की शान, पहले कही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मैंने अपने सारे पेपर तुझसे चेक करवाने हैं, कहिए है। तू मालिक यौमिद्दीन बनना। और एक इमाम है, मुझे नाम नहीं उनका याद, कहा करते थे कि अगर क्यामत के दिन मुझे चॉइस दी जाए कि तुम्हारा हिसाब किताब अल्लाह करे या तुम्हारे माँ बाप करें, जानते हैं ना माँ बाप को कितना प्यार होता है बच्चों से, वो तो हमेशा टीचरों पे शाक ही रहती हैं कि इन्होंने मेरे बच्चे के नंबर नहीं अच्छे दिए, मेरे पर्चे माँ बाप चेक करें या अल्लाह मेरा हिसाब करे, तो मैं माँ बाप की बजाय अल्लाह को चूज करूंगा। मालिकियौमिद्दीन, ये बात लिखी हुई आपके सामने इस वक्त, अब इसको सुने बगैर आप पढ़ सकते थे, आप इस स्लाइड को आगे शेयर कर दें, समझ भी नहीं आनी, इल्म की नकदरी होगी। सुने बगैर सिर्फ किताबों को अगर आप आगे से आगे बढ़ाते भी जाए ना, कुछ भी नहीं होगा। कितनी किताबें घरों में पढ़ी आज आपके, कितनी तफसीरें, कितनी हदीसें, क्या हुआ आज तक। मेरा ले हर दूसरा स्टूडेंट हमें इस चीज़ की गवाही देता है कोर्सेज ज्वाइन करने के बाद, कितने साल से घर में तफ़ीमुल कुरान था, तफसीर इब्ने कसीर थी, बुखारी थी, कभी पढ़ी नहीं, और कभी पढ़ने की शुरू भी की कोशिश की, फजर के बाद चलो लो थोड़ा पढ़े, एक सफ़े के बाद नींद आने लगती, समझ ही नहीं आती। तो उस्ताद की अहमियत को भी महसूस करे इंसान। हाँ, जो लिखा हुआ है और जो बोला जा रहा है इकट्ठा आगे दे दें किसी को तो खुशी से, बड़ी अच्छी बात है। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तू हमें अपनी शान से देना। हम तो अपनी टूटी फूटी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा है, बाप को काम करता देखता है कि वो बाप घास काट रहा है, सही वाला घास, तो वो भी लग जाता है पीछे पीछे। अब मुझे बताइए कि बाप के घास काटने में और बच्चे के घास काटने में कोई मुमासलत है? लेकिन बाप को इतना प्यार आता है उस मासूम पे कि जाके गले से लगाता है, तू मेरा बच्चा, पीछे हो जा, बाकी मैं करता हूँ। लिखिए, माँ बाप हमेशा हमारी कमियां पूरी करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कॉम्पनसेट अस। कोई बात नहीं ना, बाकी मैं कर लूंगी। ओके, तुम ये शुरू कर दो, बाकी मैं कर लूंगी। अल्लाह अपनी शान से आपको और मुझे देगा। शर्त क्या है? आमनु व आमिलु सालिहाती। खुलासा क्या है? कि अल्लाह ताला अहले ईमान को हर नेकी का बदला दुनिया में अता फरमाते हैं और इसके अलावा उनको हयातन तैयबा से नवाजते हैं। अब वो क्या है, यानी आप जुमला लिख लीजिए कि हयातन तैयबा क्या है। देखिए ना, इसकी जगह कोठी लिखी होती, कार लिखी होती, बैंक बैलेंस दिया होता तो हम सब समझ जाते, बच्चे भी समझते, क्योंकि उनको भी यही पता है कि कामयाबी के यही चंद नुस्खे हैं, यही रिजल्ट आएंगे तो आप कामयाब है, नहीं तो नहीं। तो हयातन तैयबा क्या है? पाकीज़ा हलाल रिस्क। लिखिए, हयातन तैयबा में पाकीज़ा और हलाल रिस्क है। दुआ कीजिए हमारे पेटों में पाकीज़ा और हलाल रिस्क जाए, क्योंकि अगर इससे ऑपोजिट चला गया तो रोज़े कबूल नहीं होंगे, नमाजें कबूल नहीं होंगी। अल्लाह हमारे आमाल को आमिलतुन नासिबात ना बना दे। दूसरी चीज़, सआदत मिलती है। सईद का लफ्ज़ सुना आपने, खुशबख्त, यानी जिसकी ज़िंदगी तैयब हो गई ना, हयात तैयब क्या है, सआदत वाली ज़िंदगी। यू आर ब्लेस्ड, खुशकिस्मत, जिसको उर्दू में हम कहते हैं ना खुश नसीब। तीसरी चीज़ हयातन तैयबा में आती है कनात। और शुक्र कीजिए मैं आपको ये आयत आयत की तरह तफसीर में नहीं करा रही इस वक्त, फिर तो हम अगली कुंजी पे जाते ही ना। ये तो सिर्फ आपको चंद चंक दे रही हूँ हयातन तैयबा के अंदर से निकलता क्या है। अल्लाह उसको पाकीज़ा हलाल रिस्क देते हैं, उसकी ज़िंदगी सआदत वाली होती है, यानी वो बैड लक नहीं कहता खुद को, खुशबख्त कहता है, आई एम गुड लक, हालांकि लक नहीं कहना चाहिए। बहरहाल, तीसरी चीज़ है हयातन तैयबा में कनात। आई एम हैप्पी वट एवर आई हैव विद दैट, जो मेरे पास है मैं उस पर खुश हूँ। चौथी चीज़ है इबादत की तौफीक देते हैं। रब्बी आइन्नी अला जिक्री का व शुक्री का व हसनी इबादतिक। आपने इन्हीं 5 दिनों में ये दुआ भी सीखी है। और फिर पांचवी चीज़, अल्लाह उसको अपनी इताअत गुजारी की तौफीक देते हैं। वो सिर्फ सुनता ही नहीं रहता सारा दिन, कुछ वक्त मानने के लिए भी लगाता है। समय ना वाता ना उसका शुगल है। छठी चीज़, शरह सदर होता है, दिल खुल जाता है कि बस ख़त्म, सारी ज़िंदगी के बाद अब लाइन ऑफ एक्शन समझ आई कि ये पढ़ना था, ये सुनना था, ये है वो सही चीज़। अभी तो इधर भटकी उधर भटकी, ये देखा वो ट्राई किया ये किया, वो बस किताबी किताबी चीज़ें देखी, अब सीना खुल गया। और इसी को आप मांगते हैं, रब इशराह ली सदरी। मेरे लिए हर सेशन का आगाज़ इसी दुआ से होता है कि अल्लाह सीने खोल दें। और सातवीं चीज़, हयातन तैयबा में आखरत में जन्नत। ये 7 रिजल्ट्स हैं। ये 7 चीज़ें जमा करें, इसको एक ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दें, फलनुहियन्नहु हयातन तैयबा। तो फिर आप और मैं चाहते हैं ये मिले क्या? पाकीज़ा रिस्क, खुशगवार ज़िंदगी चाहते हैं, तो फिर ऐसे अहले ईमान को क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा आमाले सालेह करिए और हयातन तैयबा पाने वालों में शामिल हो जाए। अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को इसकी तौफीक अता फरमाए। और याद रखिएगा इस बात को भी कि माले हराम कभी हयात तैयबा नहीं बनेगा। और इसी तरह अब हमने कोशिश तो की कुछ चीज़ें समझने की, आइए ज़रा एक दुआ मांग लेते हैं अल्लाह से। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तैयबा व अमलम मुतकब्बला। जमजम पीने की दुआ में भी यही दुआ है, इसमें एक दो लफ्ज़ों का इजाफा है मुख्तलिफ रिवायतों से, लेकिन जो आज आपसे शेयर की गई इब्ने माजा की रिवायत से हम तक पहुंची कि अल्लाह मैं तुझसे नफ़ा देने वाले इल्म और पाकीज़ा रिस्क और कबूल किए गए अमल का सवाल करता या करती हूँ। इसको अपना शोर बना लीजिए। जब दिल में ये हुक आए ना कि कुछ करना है ज़िंदगी में, तो अमलन मुतकब्बलन, ये ना कि अमल करें और कबूल ना हो, तो रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंत तवाबुर रहीम। तो यहाँ पे हमारी कुछ चाबियाँ पूरी हुई।